राजवीर अरमान को देखते हुए बोला, देखा, तूने अपने गुरु की पूरी लव स्टोरी सुन ली। अब वक्त है अपने वादे को पूरा करने का। एक काम कर, अपनी बीवी की मौत में खुद को तड़पा तड़पा कर मार डाल, क्योंकि मैं तुझ पर किसी तरह का कोई वशीकरण नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तू खुद बा खुद अपनी जान ले ले। वहीं सम्राट अपनी आंखों में ही झूठ मूठ की आंसुओं को साफ करते हुए तुरंत राजवीर के गले से लग गया और बोला था, वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक औरत को पाने के लिए आप इस हद तक चले जाएंगे। वाकई आप तो सबके गुरु निकले। अरमान सिंघानिया की जिंदगी में तो ये आस्था नाम की लड़की आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरमान ने उसे हासिल करने के लिए किसी तरह का कोई खून खराबा किया हो। लेकिन आपने तो पूरा का पूरा परिवार ही उजाड़ दिया था। परिवार में शायद अच्छे खासे 17 लोग थे उस वक्त। साथ ही आश्रम वाले वृद्ध लोगों को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी जान ले ली थी। और गुरुजी, जिस लड़की से सब लोग प्यार करते थे, उसी लड़की के जरिए ही आपने सबको मरवा डाला। क्या सोच थी आपकी गुरुजी? कितना मजा आया होगा ना वो सब देखते हुए, है ना गुरुजी? काश मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख पाता, किस तरीके से नैना ने अपने ही परिवार की जान ली थी। काश ये सब मैं देख पाता, कितना मजा आता मुझे। सचमुच गुरुजी, मजा ही आ गया ये सब सोचकर। ये बोलकर सम्राट राजवीर के गले से लग रहा था और राजवीर उसे खुद से दूर करते हुए बोला था, शांत हो जा पगली, शांत हो जा। मैं वादा करता हूं, भले ही उस वक्त वो मजेदार खून खराबा तुमने नहीं देखा, लेकिन आज जिस तरह से तड़प तड़प कर अरमान मरेगा, वो तुम अपनी आंखों से देखना और एंजॉय करना। अब जैसे ही राजवीर ने ये कहा, सम्राट पागलों की तरह अरमान के करीब घुटनों के बल बैठ गया। जिस तरह से छोटे बच्चे घुटनों के बल चलते हैं, उसी तरह वो घुटनों के बल चलता हुआ अरमान के पास गया और बोला, और मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया, आप कब तक तड़प तड़प कर मरेंगे? मैं आपको मरते हुए देखने के लिए पूरी तरह से बेचैन हूं। चलिए जल्दी से शुरू कीजिए अपना कार्यक्रम और मर जाइए अपनी बीवी की मौत के गम में। और मैं वादा करता हूं, आपको और आपकी बीवी को एक ही जगह काट दूंगा, या फिर एक काम करूंगा, बम से उड़ा दूंगा। जैसे ही सम्राट ने पागलपन में ये कहा, अरमान के होठों पर अचानक एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। वहीं नानी माँ घबराते हुए बोली थी, ये इंसान नहीं, दरिंदा है, राक्षस है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है एक बेचारी मासूम बच्ची के साथ? तू तो जानवर है, देख लेना, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कीड़े पड़ेंगे तुझे, तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं, तेरे सभी पापों का हिसाब होगा, देखना तू। नानी माँ की बद्दुआ सुनकर राजवीर अचानक हंसते हुए उनके पास आया और उनकी आंखों में देखते हुए बोला, बुढ़िया, जब से तू आई है तेरा ये अलग ही अलाप चालू है। एक बात बता बुढ़िया, कौन देगा बुढ़िया हमें सजा? बता, कौन करेगा मेरे पापों का हिसाब? पापी तो तुम लोग हो, जिन्होंने मेरी पसंदीदा औरत प्रियंका को मुझसे छीन लिया। सजा तो तुम लोगों को मिलनी चाहिए। और राजवीर जिंदल सजा देने के लिए किसी भगवान का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद भगवान बनकर सजा देता है। देखना चाहोगी कैसे? ये कहते हुए उसने नानी माँ की गर्दन पकड़ ली और बोला, मना किया था ना, मेरे मामले में मत बोलना, शांत रहकर मेरी लव स्टोरी सुनना। लेकिन नहीं बुढ़िया, तुझे तो कुछ ज्यादा ही बोलने की आदत है। लगता है तुझे सिंघानिया परिवार वालों ने कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। लेकिन आज मैं तुझे बताता हूँ राजवीर जिंदल के बीच में बोलने का क्या अंजाम होता है। ये बोलकर राजवीर ने उनकी गर्दन और कस दी थी। नानी माँ उसका हाथ पकड़कर उसे हटाने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, गालियां देना चाहती थी, लेकिन उनकी आवाज बीच में ही घुटकर रह गई। लेकिन तभी अचानक अरमान सिंघानिया ने तेजी से आगे बढ़कर राजवीर का हाथ कसकर पकड़ लिया, इससे पहले कि नानी माँ की जान चली जाती। अरमान का हाथ राजवीर के हाथ पर पड़ते ही माहौल में एक अलग ही तनाव फैल गया। राजवीर उसकी ओर देखते हुए बोला, ये क्या? अरे तुझे तो मेरी लव स्टोरी सुनाई थी ना, तूने सुन ली? तो इस बुढ़िया को बचाने से तेरा क्या फायदा होने वाला है? आस्था तो चली गई तुझे छोड़कर, अब तुझे भी नहीं जीना चाहिए, तुझे भी अपनी जान दे देनी चाहिए। जैसे ही राजवीर ने ये कहा, अरमान ने झटके से उसका हाथ नानी माँ की गर्दन से हटाकर उसे दूर धक्का दे मारा और फिर अचानक जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सम्राट और राजवीर कन्फ्यूजन में एक दूसरे की ओर देखने लगे। वहीं अविनाश गुस्से से अरमान को देखते हुए बोला, तेरे जैसा निर्दयी इंसान नहीं देखा, मेरी बहन की तूने अपने हाथों से जान ले ली और उसके बाद भी इस तरह पागलपन कर रहा है। जैसे ही अविनाश ने ये कहा, अरमान ने सिर्फ ठंडी खतरनाक नजरों से उसकी ओर देखा और अविनाश के शब्द उसकी जुबान में ही दबकर रह गए। ऐसा लगने लगा था कि अरमान की आंखें ही काफी थी उसे डराने के लिए। अब फिलहाल अरमान सीधा खड़ा हुआ, तभी अचानक उसने एक जोरदार मुक्का राजवीर के मुंह पर दे मारा। ठीक उसी वक्त राजवीर सम्राट से जा टकराया था। सम्राट अब गुस्से से अरमान के सामने खड़ा हुआ और बोला, तूने सिर्फ और सिर्फ अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी कि गुरुजी तुझे अपनी लव स्टोरी सुनाए, और उन्होंने तुझे अपनी लव स्टोरी सुना भी दी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह से उन पर हाथ उठाने का तेरा क्या मकसद है। जाकर अपनी जान ले ले, हम तो सिर्फ और सिर्फ तुझे तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहते हैं। वहीं संजना, जो कि ये सारी बातें अच्छी तरह से सुन भी रही थी, मौका देखकर वहां से निकल चुकी थी। उसके चेहरे से पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिस जगह पर राजवीर उसे अपनी लव स्टोरी सुनने के लिए बैठा कर गया था, वहीं से संजना चुपचाप निकल गई थी। हालांकि राजवीर ने उसे जाते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी उसने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। आखिरकार संजना उसके लिए कुछ भी नहीं थी, कोई खास मायने भी नहीं रखती थी। फिलहाल सम्राट की बात सुनकर अरमान ने गहरी सांस ली और अचानक खींचकर उल्टे हाथ का एक जोरदार मुक्का उसके भी मुंह पर दे मारा। सम्राट सीधे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। अब सम्राट ने राजवीर को देखते हुए घबराकर कहा, गुरुजी ये सब क्या हो रहा है? आपने तो कहा था कि ये खुद को इतना ज्यादा तोड़ चुका है कि अपनी बीवी की तरह खुद भी जान ले लेगा, लेकिन ये क्या? ये तो हम लोगों की ही जान लेने पर उतारू हो गया है। सिक्योरिटी को बुलाइए। ये सुनकर राजवीर ने अरमान को गहरी नजरों से देखा और फिर उसके पास जाकर बोला, सच बता, यहाँ क्या चल रहा है? जैसे ही राजवीर ने ये कहा, अरमान ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, गर्दन को हल्का तिरछा किया और उसे देखते हुए बोला, आपको क्या लगता है गुरुजी, यहाँ क्या चल रहा है? ये सुनकर राजवीर ने अगले ही पल जमीन पर पड़ी आस्था की ओर देखा, फिर अरमान की ओर, और अचानक जैसे उसका दिमाग भड़क उठा, उसने अपने ही सिर को पकड़कर जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर सम्राट की आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं पूरा परिवार ये सब देखकर सन्न था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और राजवीर इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा था। राजवीर गुस्से और पागलपन में अपने सिर पर वार करता हुआ चिल्ला रहा था। तभी अबीर गुस्से से चिल्लाकर बोला, राजवीर अगर तेरे में हिम्मत है तो अरमान की जान ले, इसी की वजह से मेरी आस्था की जान गई है, इसे जीने का कोई हक नहीं है, अभी के अभी इसे खत्म कर दे। लेकिन अरमान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे सम्राट के करीब गया, उसका कॉलर पकड़ लिया और अपने ही सिर से लगातार उसके सिर पर वार करने लगा। अरमान का हर एक वार हथौड़े के समान लग रहा था। सम्राट बुरी तरह से घायल हो चुका था, उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। सम्राट दर्द से कराहते हुए राजवीर की ओर देखकर बोला, गुरुजी सिक्योरिटी को ऑर्डर करो, अरमान पर हमला करें। वो हकलाते हुए बार बार यही बात दोहरा रहा था, लेकिन राजवीर की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो किसी भी तरह की स्थिति को संभालने की हालत में नहीं था। वो जैसे किसी गहरे सदमे में डूब चुका था।
उधर अरमान लगातार सम्राट पर वार किए जा रहा था। जब सम्राट ने देखा कि अरमान रुकने वाला नहीं है, तो उसने भी बदले में उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसका एक भी वार अरमान को नहीं लग पाया। अब तो सम्राट पूरी तरह से डर गया था। तभी अचानक राजवीर दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने अरमान को घूरते हुए कहा, सच सच बता, यहाँ क्या चल रहा है? क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि तेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मुझे हार जैसा महसूस हो रहा है। सच बता, इस खेल में जीता कौन है, तू या मैं? जैसे ही राजवीर ने ये कहा, सम्राट ने अपने खून से भरे मुंह से खून थूका, पास पड़ी पानी की बोतल उठाकर अपने चेहरे पर डाली और गहरी सांस लेते हुए बोला, अरे गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसकी बीवी मरी है, इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हार गए हैं? लेकिन राजवीर ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया और ठंडी आवाज में बोला, जब समझदार लोग बात कर रहे होते हैं तो बेवकूफों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये सुनकर सम्राट ठहर सा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। वो तो बस सामान्य बात कर रहा था, लेकिन राजवीर ने उसे ही बेवकूफ कह दिया। इसके बाद राजवीर ने फिर से अरमान की ओर देखा और धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, अब बता, इस खेल में जीता कौन है, तू या मैं? तभी अरमान ने रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, गुरुजी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए इस खेल में कौन जीता है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वहीं आकाश और सुमित अरमान के चेहरे पर इतनी शांति देखकर हैरान हो गए थे। आहान रूठ स्वर में दोनों को देखते हुए बोला, भाभी यहाँ पर मरी पड़ी हुई हैं, लेकिन अरमान भैया को ऐसा लग रहा है जैसे हार जीत का खेल चल रहा हो। आखिर किस बात में जीत गई ये? हार तो गए हैं पूरी तरह से। हम अपनी आस्था भाभी को नहीं बचा पाए, हमसे ज्यादा बदनसीब और कौन होगा? ये कहते कहते आहान एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन तभी राजवीर जोर से हंसते हुए बोला, पगले ये तो मैं भी जानता हूँ कि तेरे पास कोई ना कोई प्लस पॉइंट जरूर है जो तेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन तेरी बीवी मर चुकी है तो तू जीत कर भी हार गया, समझा? जैसे ही राजवीर ने ये कहा, अचानक अरमान जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते उसने अपनी बाहें फैला दी और बोला, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, एक बार आकर मुझे गले तो लगाइए। जैसे ही अरमान ने ये बात पूरी तरह फिल्मी अंदाज में कही, आस्था, जो कुछ ही देर पहले तक पूरी तरह से मरी हुई लग रही थी, अचानक उठकर बैठ गई और सीधे उठकर अरमान के गले से लग गई। ये दृश्य देखते ही राजवीर और सम्राट की आंखें हैरानी से फट गईं। इतना ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोग, आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, अबीर सिंह राठौड़ और अविनाश सूर्यवंशी और सभी लड़कियां, सब की आंखें अविश्वास से फैल गई थीं। जिस आस्था को उन्होंने अभी अभी अरमान के हाथों मरते हुए देखा था, वही आस्था अब बिल्कुल सही सलामत अरमान के गले लगकर खड़ी थी। ये नज़ारा वहां मौजूद हर एक इंसान को अंदर तक हिला गया था, जैसे किसी ने एक पल में सबकी दुनिया उलट पुलट कर दी हो। सबकी आंखें फैली हुई थीं, सांसें थमी हुई थीं, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह हकीकत है या किसी खौफनाक सपने का हिस्सा। सब हैरानी से कभी आस्था और अरमान को देखते तो कभी उस पागल सन की राजवीर को, और हर एक के चेहरे पर बस एक ही सवाल था, ये आखिर हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा था मानो हर कोई अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा हो कि हाँ, उनकी आस्था सच में जिंदा है, सही सलामत है, वो उनसे छिन नहीं गई। लेकिन दिमाग अभी भी इस सच्चाई को अपनाने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर पहले तक जो लोग आस्था की मौत पर फूट फूट कर रो रहे थे, जिनकी आंखों में बेबसी और दर्द भरा हुआ था, वही लोग अब उसे अपने सामने जिंदा देखकर अंदर से टूटते हुए भावनाओं के सैलाब में बह रहे थे। किसी की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे तो कोई अभी भी कांपते होंठों से भगवान का नाम लिए जा रहा था। वहीं आस्था, उसने तो अरमान को इस तरह कसकर गले से लगा रखा था जैसे अगर उसने जरा सा भी ढीला छोड़ा तो ये पल फिर से उससे छिन जाएगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, ये उस दर्द, उस डर और उस खोने के एहसास के थे जिसे वो कुछ ही पल पहले जी चुकी थी। उसकी उंगलियां अरमान की पीठ को कसकर पकड़े हुए थी, मानो वो खुद को यकीन दिला रही हो कि मैं सच में जिंदा हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। और अरमान वो भी उसे ऐसे थामे हुए था जैसे उसने अपनी पूरी दुनिया वापस पा ली हो। वहीं राजवीर आस्था को अपने सामने सही सलामत खड़ा देखकर पूरी तरह से बिखर गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, होंठ सूख चुके थे और चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ छलक रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस वक्त हंसे, रोए या भाग जाए, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी हो। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार हथौड़े की तरह बज रहा था, अगर आस्था जिंदा है तो फिर उसकी मौत का नाटक किसने रचा और क्यों? राजवीर की नजर धीरे धीरे कांपते हुए अरमान की तरफ उठी। अब उसके चेहरे पर वही घमंड नहीं था, अब वहां सिर्फ डर था, खौफनाक, अंदर तक चुप जाने वाला डर। कांपती आवाज में उसने अरमान से कहा, ये सब क्या है अरमान? तुमने मुझे क्या दिखाया है? आस्था अगर ये जिंदा थी तो फिर वो सब क्या था? वो मौत, वो दर्द, वो चीखें, सब झूठ था? वो एक कदम पीछे हट गया, जैसे अरमान के पास खड़ा रहना भी अब उसके लिए खतरनाक हो गया हो। और तुमने मुझे मेरी ही लव स्टोरी सुनाने पर इतना जोर क्यों दिया? उसकी आवाज अब और भी धीमी लेकिन डर से भरी हुई थी। क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? तुम क्या साबित करना चाहते थे? राजवीर की सांसें तेज हो चुकी थीं, दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि वो किसी खेल का खिलाड़ी नहीं बल्कि खुद एक मोहरा बन चुका है। वहीं अरमान अब भी खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी खतरनाक शांति थी, ऐसी शांति जो तूफान आने से ठीक पहले होती है। राजवीर ने घबराकर एक बार फिर पूछा, बोलो अरमान, चुप क्यों हो? डर लग रहा है मुझे, आखिर क्या खेल खेल रहे हो तुम? अब उस पागल सन की राजवीर की आवाज में पहली बार डर साफ सुनाई दे रहा था और यही डर उस पूरे माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहा था। वहीं नानी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन इस बार डर के नहीं बल्कि राहत के। उन्हें पहले ही कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि आस्था को कुछ नहीं हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है।